श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में आप पढ़ते हो किस प्रकार हमें अलग अलग प्रकार के अपराधों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अज्ञानता में हम सोचते हैं सब समाप्त हो जाएगा मृत्यु के साथ, है ना। इसलिए भौतिकवादियों का क्या भाव रहता है, खाओ पियो और जियो। पर वो भूल जाते हैं आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है, पर हमें कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। अगर हम पुण्य कार्य करते हैं तो आप स्वर्ग लोक में जाने के योग्य हो जाते हो, और पिछले अध्याय में स्वर्ग लोक और भगवतम में स्वर्ग लोक के विषय में भी ज्ञान है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से निरंतर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं वो कहाँ जाते हैं, भगवान के दिव्य धाम, जहाँ की किसी प्रकार का जन्म मृत्यु के बंधन से पूरा छुटकारा मिलता है। जो पुण्य कर्म करते हैं पर साथ में इंद्रिय तृप्ति का भी भाव रखते हैं उन्हें स्वर्ग में जाना पड़ता है। स्वर्ग में वो रह पाते हैं पुण्य कर्म के ऊपर आधारित, फिर वहां से भी निकलना पड़ता है। जैसे मान लो आप विदेश जा रहे हो, आपके पास एक साल का वीजा है तो एक साल के लिए रह सकते हो, फिर निकलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा बहुत भयंकर है कि नहीं। आपने तो इस समय केवल 5 नरकों का सुना, 28 नरक हैं अलग अलग प्रकार के अपराधों के लिए। और अज्ञानता में हम सोचते हैं किसने देखा ये सब, पर शास्त्रों का जो ज्ञान है ये 100% सत्य है। ये मत सोचेगा ये किसकी कल्पना है। तो लोग घबरा जाते हैं ये सुनकर। जब आप लोगों को कहो ये जो आप गलत कार्य कर रहे हो, जो मांस खा रहे हो, ये कर रहे हो, इसका ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो लोग क्या कहते हैं, विश्वास ही नहीं करते। ये है हमारा दुर्भाग्य। तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं इस अध्याय में कि हम 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं। 3 गुण क्या हैं? सतगुण, रजगुण और तमोगुण। और इन गुणों के प्रभाव में आकर जब आप सतगुण के प्रभाव में होते हो तो धार्मिक कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, प्रसन्नता अनुभव करते हो और स्वर्ग लोक जाने के योग्य हो जाते हो। जब आप राजसिक कार्य करते हो तो आप बहुत अधिक परिश्रम करते हो, फिर आप चाहते हो ये परिश्रम का परिणाम जो है ये सब आप ही उठाओगे, इसका नतीजा आपको ही पहुंचना चाहिए, किसी और को नहीं। और तमोगुण के प्रभाव में आम अज्ञानता में रहते हैं। तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं 28 अलग अलग नरक हैं और हम सबके कार्य के साक्षी कौन बनते हैं? यमराज जी। यमराज जी मृत्यु के देवता हैं, सबके कर्मों का हिसाब किताब रख रहे हैं। जैसे आप जब बैंक अकाउंट रखते हो, जब पैसा जोड़ते हो तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, निकालते हो तो डेबिट हो जाता है। उसी प्रकार जब आप शास्त्र पर आधारित कार्य करते हो तो एक लाभ है, और शास्त्र के विपरीत कार्य करते हो तो दूसरा नतीजा भोगना पड़ेगा। ये सोचना कि हम कुछ भी कर सकते हैं और परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, ये भूल है। देखो बोला फोन में बात कर रहा है यार, ये बिल्कुल भूल है। तो हमारे कार्यों के अनेक साक्षी बनते हैं, सूर्य के देवता, चंद्रमा, तारे, देवता, ये सब साक्षी बनते हैं, और परमात्मा। जैसे कि भौतिक स्थिति में सजा जब दी जाती है जब कोई गवाही दे, अगर कोई गवाही नहीं दे पाए तो कई बार मुजरिम बच भी जाता है। तो ये गवाही के लिए अनेक साक्षी हैं, ये देवता इत्यादि। तो इन श्लोकों में कहा जा रहा है किस प्रकार के अपराध का क्या परिणाम होगा। जैसे कि कई व्यक्ति हैं जो कि ये लोग फोन में बात कर रहे हैं, कई व्यक्ति हैं जो कि कली को जीवित व्यक्ति अर्पण करते हैं, है कि नहीं, कम बुद्धि के लोग। तो जो व्यक्ति कली को जीवित व्यक्ति अर्पण करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें यामराज के पास ले जाया जाता है, जहां कि जिन व्यक्तियों को उन्होंने अर्पण किया था वो व्यक्ति तलवार लेकर उन्हें काट देते हैं। तो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, नेले पे देला, हिंदी में कहते हैं नेले पे देला। तो ये है प्रकृति का नियम। बाइबल में भी कहा गया है, एज यू सो यू शैल रीप, जिस प्रकार का कार्य करोगे उसी प्रकार का नतीजा भोगना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों को भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं काली के चरण में, वही व्यक्ति चाकू लेकर इन लोगों को काटते हैं और फिर नाचते हैं। फिर आगे तो इन व्यक्तियों को कौन से नरक में जाना पड़ता है, इनको भी नरक में जाना पड़ता है। नाम नहीं दिया गया कौन से नरक में जाते हैं। अच्छा, आगे कई बार लोग पशुओं को अपने घर में रखते हैं, उनको पालते हैं जैसे कि बच्चों को पालते हैं, और पशु क्या सोचता है, मेरा अच्छा मालिक है, ये मेरी सुरक्षा करेगा। फिर पालने के बाद क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। जैसे आपको दुख होगा सुनकर, लोग जो गाय हैं, गायों को बड़ा अच्छा घास खिलाते हैं। ये घास खिलाते हैं क्यों, वो मोटी हो जाए, और जब मोटे हो जाए तो उन्हें कत्ल खाना भेज देते हैं। ये है दुर्भाग्य। तो कई लोग पशुओं को, चिड़ियों को, पक्षियों को सुरक्षा देते हैं, उनको ये विश्वास दिलाते हैं हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, घबराओ मत। पर फिर थोड़ी देर बाद उनको, उनके साथ खेलते हैं और उनके ऊपर सुई डालते हैं जिससे उनको कष्ट आता है। तो मृत्यु के बाद जो यामदूत हैं, यामदूत कौन है, यामराज जी के सहयोगी यामदूत, ऐसे व्यक्तियों को यामराज के पास जाते हैं, लाते हैं, जो उनको भेजते हैं सुला प्रोता। ये नरक का नाम क्या है, सुला प्रोता, वहां भेजते हैं। वहां इन व्यक्तियों को वैसे ही सुई के साथ चोवा जाता है जैसे वो चोपते थे इन पशुओं को, और फिर उनको इतनी प्यास लगती है, इतनी भूख लगती है कि वो बेहोश हो जाते हैं, और फिर वो याद कर सकते हैं कि पूर्व जन्म में हमने भी महान अपराध किया था जिसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। समझे, तो क्या था ये नरक का नाम, सुला प्रोता। अगले नरक का नाम है दंडाशुका। जैसे कि कईयों के हृदय में द्वेष रहता है, ईर्ष्या, सबके प्रति किसी को नहीं देखना चाहते आगे बढ़ते हुए, सबके प्रति द्वेष द्वेष, और हमेशा क्रोधित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति को हमेशा नुकसान देने को तैयार हैं। तो मृत्यु के बाद वो नरक में जाते हैं जिसका नाम है दंडाशुका, और इस नरक में सांप हैं 5 से 7 सिरों वाले। और ये जो सांप हैं इनको खाते हैं, जैसे कि सांप चूहे को खाता है। सांप चूहे को खा लेता है ना, बिल्ली चूहे को खा लेती है, तो ऐसे ही पांच सात शेर वाले ऐसे लोगों को खाते हैं जिनके हृदय में सदा द्वेष भाव, क्रोध। कई लोग हैं गाली के बगैर बात ही नहीं करते, है ना। खास के भारत में आपने देखा होगा हमेशा क्रोधित होते हैं, तो उनको ये परिणाम भोगना पड़ता है। तो कई लोग हैं जो दूसरों को सजा देते हैं, कुएं में फेंककर पहाड़ों में फेंक देते हैं, छुपा देते हैं, तो उनको जाना पड़ता है एक नरक जिसका नाम है अवाता निरोधाना। वहां इन व्यक्तियों को कुआं जिसमें बिल्कुल रोशनी नहीं है वहां फेंका जाता है। कुएं में गिरना आगे कष्ट का कार्य है, तो अगर आपको कुएं में ऐसे कुएं में फेंका जाए जहां बिल्कुल रोशनी नहीं है वो तो बहुत खतरनाक है ना। इन्हें ऐसे कुएं में फेंका जाता है और वहां झेरेलू धुआं होता है जो उनको बेहोश कर देता है। फिर कई हैं जो कि कोई मेहमान आपके घर में आ जाए तो बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, क्यों आ गए मेरे घर में। शास्त्र का निर्णय है कि अगर कोई शत्रु भी आपके घर में आए तो आप उसको, उस अतिथि को पूरा आदर देना चाहिए। पर कई हैं जो कि जब कोई आ जाए आपके घर में कोई अतिथि तो हम बड़े क्रोधित नजरों से देखते हैं, तो उस ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ता है पर्यावर्ताना नरक, जहां की बाज और जानवर आकर, सुनना चाहते हो, उनकी आंखों को निकाल देते हैं। जो व्यक्ति बड़े ईर्ष्या द्वेष से स्वभाव रखते हैं, तो आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के अपराधों का किस प्रकार का परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान ये ज्ञान हमें क्यों दे रहे हैं? वो ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम वजीव समझ सकें कि भौतिक जीवन में क्या है, क्लेश ही क्लेश, और अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे तो क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। आगे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति धन कमाते हैं और धन के कारण व्यक्ति क्या घमंडित हो जाता है। सच, अगर कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो, बहुत धनी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, सुंदर पत्नी बच्चे हो, तो उसके मन में क्या गौरव नहीं आ जाता। इसलिए इन स्थितियों को शत्रु माना जाता है। आप देखते हो आध्यात्मिकता में धनी खानदान के व्यक्ति बहुत कम रुचि लेते हैं, रुचि लेते भी हैं तो नाम के लिए, और गरीब खानदान के लोग ज्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि ये धन उनका दुश्मन बन गया है। तो यहां शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो व्यक्ति बड़े घमंडित हो जाते हैं, मेरे पास इतना धन है मेरे बराबर कोई नहीं है, और जिसके पास धन है वो चिंता में भी रहता है। आप बड़े बड़े चौकीदारों को कहां देखते हो, धनी व्यक्तियों के घरों के सामने, है ना, ऊंची दीवार, चौकीदार, कुत्ते, ये सब कहां देखते हो। धनी होंगे, गरीबों के घरों के सामने तो चौकीदार नहीं देखते, नहीं, क्यों? इन व्यक्ति को चिंता है कोई हमारा धन आके चोरी कर लेगा, है ना। डाकू लोग, चोर लोग किसको निशाना बनाते हैं? गरीबों को नहीं, अमीरों को। वो कहते हैं उनके पास उतना धन है, हमें उनका धन लेने दो, तो वो चिंता में रहते हैं और वो किसी को विश्वास नहीं करता। और जब उसके मन में ये भाव आता है, अगर ये धन एक दिन खो गया तो क्या होगा मेरा, वो चिंता में ही रहता है और चिंता में रहता है और उसको ये नहीं पता चिंता से रहित कैसे हो सकते हो। चिंता से रहित कैसे हो सकते हो? गोविंद दास ने बड़े बड़े सुंदर भजन दिया है, बाजा हुड़े माना श्री नंद नंदना अभय चरना रविंद्र रे। हे मेरा मन तुम चिंता से भरे हुए हो, सच झूठ दे। आप भारत का प्रधानमंत्री की गाड़ी जब चलती है चारों तरफ सड़कें बंद हो जाती हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहां जाता है पूरा शहर लगभग बंद हो जाता है। क्यों? चिंता, चिंता है कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो जो व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है और उसको यही चिंता है कि धन से को कैसे बचाया जाए, अगर धन चले जाएगा तो मैं मेरा क्या होगा, ये चिंता में है। वो ये नहीं जानता, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, धन है तो धन का उपयोग करना चाहिए किसकी सेवा में? नारायण। लक्ष्मी को सदा कहां होना चाहिए? नारायण के चरण में। पर लक्ष्मी को जब आप अपने जेब में डालोगे तो फिर उसका क्या परिणाम होगा सुनना चाहते हो? फिर आप लोग के पास तो शायद इतनी लक्ष्मी नहीं है, पर जब भी सुन लो। तो जो व्यक्ति धन कमाता है उसके कारण चिंता में रहता है, वो धन इस भाव से नहीं कमा रहा मैं धन कमाऊंगा तो भगवान की सेवा में लगाऊंगा, वो धन इस भाव से कमा रहा है धन कमाऊंगा संपत्ति बढ़ेगी समाज में मेरा स्थान बढ़ेगा ज्यादा लोग मुझे सलाम करेंगे और मैं लोगों पर हुक्म चलाऊंगा। ये भाव से नहीं धन कमाऊंगा भगवान का मंदिर बनाऊंगा। तो इन व्यक्तियों को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है? एक नरक में जाते हैं जिसका नाम है सूची मुखा, और वहां यामराज जी के प्रतिनिधि जिन्हें आप यामदूत बुलाते हो क्या करते हैं, वो पूरे शरीर को सीते हैं जैसे कपड़ा सिया जाता है। कपड़ा सीते हैं ना लोग, तो पूरे तेज सुई लेकर पूरे शरीर को सीते हैं। जो व्यक्ति धन के पीछे जाते हैं और धन कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। मुझे कई साल पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि भारत से जो सबसे बड़ा एक व्यक्ति ने कहा था भारत का जो गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, कोई मुसलमान नहीं था कोई हिंदू था। एक मंत्री हैं जिनकी पत्नी वेयर हाउस रखा है कत्ल जानवर रखने के लिए। तो धन कमाने के लोग क्या नहीं करते। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहेंगे हम तो वेजिटेरियन हैं पर धन कमाने के लिए क्या मांस का धंधा कर रहे हैं। तो धन कमाने के लिए आज लोग क्या नहीं करते, अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, युद्ध शुरू करा देते हैं बड़े बड़े देश, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा धंधा क्या चीज का है? हथियारों का, सोने का नहीं चांदी का नहीं हथियारों का, ये सबसे बड़ा धंधा है। पर हथियार लोग कब खरीदेंगे? जब टेंशन होगा है ना, जब युद्ध का वातावरण होगा, जब शांति का वातावरण है जब थोड़ी लोग हथियार खरीदेंगे। जब युद्ध का वातावरण है टेंशन है तो ये बड़े बड़े धनी देश सारे विश्व में इतना टेंशन रखते हैं कि लोग उनके हथियार खरीदें। क्यों? हथियार खरीदेंगे तो लोग पैसा कमाएंगे। लोग अमेरिका एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध शुरू करवाते रहता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि जब तक हथियार वगैरह लोग नहीं खरीदेंगे उनका हिसाब किताब ठीक नहीं बनता। तो ऐसे लोगों को कहां जाना पड़ता है? सच्ची मुख। तो हमें बड़े ध्यान से इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करें। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वो धनी बन जाता है। श्री प्रभुपाद रशिया में गए थे सोवियत यूनियन में 1972 में, तो वहां वो मिले थे एक बड़े प्रसिद्ध फिलोसफर डॉक्टर किटोस्की। उन दिन में रशिया देश का सिद्धांत था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब है सब चीज सरकार की है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप में हमारे में एक अंतर है, आप कहते हो सरकार मालिक है, हम कहते हैं भगवान मालिक है। और प्रभुपाद जी ने ये श्लोक उपयोग किया, ईशावासी दान सर्वम यहाँ कितना जग जगना पूंजिता माँ के दहाँ का सस्वना। हर व्यक्ति को उतना ही रखना चाहिए जितना कि आवश्यक हो, उसे अधिक नहीं। हम ये नहीं कहते धन को मत कमाओ, पर उतना रखो अपने लिए जितना कि आवश्यक हो। अगर ज्यादा धन हो तो ठीक रूप से उपयोग करो। आपको शास्त्रों में रूप गोस्वामी का उदाहरण मिलता है। रूप गोस्वामी जी उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के शासन का कार्य शासन को चला रहे थे। जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, 50% बांटा ब्राह्मणों को। तो अगर आप धन कमाते हो तो अपने लिए उतना रखो जितना कि आवश्यक हो, और उससे अधिक कहां खर्चो, भगवान में। जैसे हम कह रहे थे लक्ष्मी का, लक्ष्मी हमेशा कहां रहती है, नारायण के चरणों में। इसलिए प्रभुपाद जी गीता के 5वें अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं मैं हूं हर चीज का भोक्ता, मैं हूं हर चीज का स्वामी। तो हर चीज का उपयोग करना चाहिए किसलिए, भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि अगर आप धन कमाओ और धन का उपयोग नहीं करो भगवान की सेवा में तो क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे आपने सुना सची मुखा नरक में, लोग टैक्स छुपाने के लिए कितनी बेईमानी करते हैं, तो धन कमाने के लिए क्या नहीं करते है कि नहीं। धन कमाने के लिए किसको लूटना हो कुछ करना हो तो वो भूल जाते हैं कि आप जब धन कमाओगे और भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करोगे तो इसका क्या परिणाम है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं धन कमाओ तो धन को लगाओ किस लिए, भगवान के प्रचार में, भगवान की सेवा में। जब आप धन को लगाते हो भगवान की सेवा में तो धन कमाने में जो अपराध किया था उससे आप बच जाते हो। मान लो आपने 10,000 रूपये कमाए हैं और 2,000 रूपये भगवान को दिया है, तो उससे जो भगवान की सेवा में लगाया है उसके कमाने में जो पाप था उससे आप बच जाते हो। तो दूसरे शब्दों में प्रकृति के नियम जो हैं बहुत ही कड़क हैं। जैसे कि भौतिक समाज में अगर आप धन कमाओ और टैक्स नहीं भरो तो आपको दंड हो जाता है, तो इसी प्रकार परम भगवान है हर चीज के भोक्ता। और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि हमें धन का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। जो ब्राह्मण हैं वो धन के लालची नहीं होते। आप पढ़ते हो राम राज्य के समय भगवान राम ने अपनी सारी संपत्ति सोने गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। केवल सीता देवी जी ने एक नथनी अपने लिए रखी थी, ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों ने कहा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हमारा राजा हमारी इतनी प्रेम से देखभाल करता है। उन्होंने सारा धन वापस दे दिया किसे, भगवान राम को। भगवान राम ने उनसे पूछा जितनी जमीन चाहिए मांगो, ब्राह्मणों ने उतनी मांगी जितना की आवश्यक था। तो जो ब्राह्मण हैं, अगर उनके पास धन हो, संपत्ति हो, तो क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं और स्वयं वो संतुष्ट रहते हैं जो भी थोड़ा उन्हें प्राप्त हो। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में है, समो दमो तपो सोचम शांति रजो मेव च ज्ञान विज्ञान अवस्थ्यम ब्रह्म कर्म स्वभा जाऊ। यह है ब्राह्मणों के गुण। फिर प्रभुपाद जी यहाँ क्षत्रियों का भी उपयोग कर रहे हैं, क्षत्रियों का वर्णन करते हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य बनता है शासन करें। क्षत्रिय जो होते हैं दानी भाव के होते हैं और समाज की सुरक्षा करते हैं। जो वैश्य हैं वो धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं और खेती की देखभाल करते हैं। और जो शूद्र हैं वो इन तीन वर्णों की सेवा करते हैं, जैसे पैर पूरे शरीर का बोझा उठाता है, जो शूद्र हैं तीन वर्णों का सहयोग करते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर हम भगवान की संपत्ति का उपयोग गलत कार्य में करते हैं तो हमें इसका पूरा दंड भुगतना पड़ता है। तो हर चीज के असली स्वामी कौन है? परम भगवान। जब हम ये स्वीकार करें भगवान ना ही संपत्ति के स्वामी हैं, हमारे शरीर के भी स्वामी हैं। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है ऋषिकेश, ओम इंद्रियों के स्वामी, जिसका अर्थ है इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किसकी सेवा में? किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। जब आप इंद्रियों का उपयोग करते हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो आपको फिर नरक में जाना पड़ेगा, जिस प्रकार आप इस 26वें अध्याय में पढ़ रहे हो। और जब आप इंद्रियों का उपयोग करो ये सोचते हुए कि इंद्रियों के स्वामी कौन है? परम भगवान, तो फिर आप इसके परिणाम से मुक्त हो सकते हो। तो हर चीज के स्वामी परम भगवान हैं। तो भक्त के मन में भाव रहता है कि अगर भगवान मुझे कोई सुविधा दे रहा है तो मुझे इस सुविधा का उपयोग करने दो, किस लिए? भगवान की सेवा में। ये है असली ज्ञान, राजा विद्या राजा गुह्यम। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये जो ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो भक्तों का यह भाव रहता है कि अगर भगवान कोई सुविधा दे, सफलता दे, तो इसके इसका उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान की सेवा में। तो अगर हमारे में ये योग्यता हो, कला हो, जैसे आप इस्कॉन की किताबों में देखते हो बड़ी सुंदर तस्वीरें, प्रभुपाद जी कहते थे आर बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड, दिखने में छपाई में फर्स्ट क्लास और जो मसाला है वो भी फर्स्ट क्लास, वो असली संदेश है। तो ये पेंटिंग्स किसने की हैं? भक्तों में जिनमें कला थी पेंटिंग की। तो भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कला दी है, कुछ न कुछ योग्यता दी है और हर एक व्यक्ति को जीव दिया है, दो कान दिए हैं। तो हमें इस जीव का उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान के गुणगान में। कानों का उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान का गुणगान सुनने के लिए। पैरों का उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। हाथों का उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। नाक का उपयोग करना चाहिए, किस लिए? भगवान को अर्पित किए हुए फूलों को सूंघने के लिए। तो दूसरे शब्दों में अगर हम हर स्थिति का उपयोग करें भगवान की सेवा में, फिर आप पापों के परिणाम से भुगत सको, बच सकोगे। तो शुक्रदेव गोस्वामी हमें नरकों का वर्णन भी करके दे रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। समस्या ये है कि जो भौतिकवादी हैं वो ये सोचना ही नहीं चाहते कि भविष्य में उन्हें पापों का परिणाम भोगना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए वो क्या कहते हैं? सब समाप्त हो जाएगा मृत्यु के साथ। क्या प्रमाण है कि आत्मा सनातन है? ये उनका विचार. क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अगर आत्मा सनातन है तो हमें पापों का परिणाम ही भोगना पड़ेगा. पापों का परिणाम भोगना पड़ेगा तो फिर सजा भोगना पड़ेगा. तो वो ये सोचना ही नहीं चाहते. पर इनके उनके सोचने से ये थोड़ी की असलियत बदल जाती है. तो श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण ज्ञान है हर विषय के ऊपर. और इसलिए भगवान कहते हैं भक्तों की संगत में आओ. साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ माता साधु संग सर्वसिद्धि आया. साधु की संगत लो, साधु की संगत रहोगे तो आपको असली संदेश मिलेगा. साधु की संगत लोगे तो आपको ये संदेश मिलेगा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, भगवान के नामों का उच्चारण करो. साधु की संगत मिलोगे तो ये संदेश मिलेगा किस प्रकार अलग अलग अपराधों का परिणाम भुगतना पड़ेगा. तो यामराज जी प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि कोई भी श्रद्धालु व्यक्ति भगवान के शरणागत हो रहा है. जब यामदूतों ने देखा, यामदूत आए थे आज जमील को नरक में ले जाने के लिए, वो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि विष्णु दूत वहां पहुंच गए, उन्होंने रोक दिया. तो यामराज दूत घबरा गए थे. तो उन्होंने पूछा यामराज से, आपसे ऊपर कोई शक्ति है? यामराज जी ने क्या कहा? है कृष्ण के. और यामराज ने आगे कहा, तुम भविष्य में उन व्यक्तियों को मत छूना. किनको नहीं छूना? किनको? जिनके जीभ से क्या निकलता है? हरे का नाम. जिनके सिर भगवान के सामने झुकते हैं उनको मत छूना. तो भक्तों की संगत में रहने से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है. दिव्य ज्ञान के पालन से हमारा चरित्र सुधरता है. चरित्र सुधरता है जब भक्ति की विधियों का पालन करते हो. तो हम सब गलत कामों में जुड़े हुए थे. हम एक प्रार्थना कहते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन श्लोक्य. हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर भगवान की कृपा से भक्त गुरु साधु की संगत मिली जिसके द्वारा हमारी अज्ञानता दूर हुई. तो अगर भगवान धन देता है तो धन का उपयोग करना चाहिए. किस लिए? जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा भक्ति का प्रचार करने में. प्राचीन समय में जो हमारे राजा थे वो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे. अगर भारत के प्राचीन बड़े मंदिरों को देखो, लगभग इस सब राजाओं ने बनाया. तो ये रिवाज हिंदुओं में नहीं, विदेशों में भी है, क्रिश्चियंस में भी. अगर आप यूरोप में जाओ जो बड़े बड़े चर्च देखोगे, ये सारे चर्च राजाओं ने बनाया है. जो बड़े बड़े मस्जिद है राजा बनाते हैं. तो कहने का तात्पर्य है ये बड़ा प्राचीन रिवाज है. जिनके पास धन है धन का उपयोग करें भगवान की सेवा में. पर आजकल राजा तो समाप्त हो गए लगभग. जो नए राजा बने वो धार्मिकता के लिए कुछ नहीं कर रहे. ये है खास करके जो हिंदू धनी लोग हैं बहुत कम कर रहे हैं. तो हर योग्यता का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में. साधु संघ में रहना चाहिए. माया के प्रभाव से बचने के लिए एक मुख्य उपाय है, वो क्या है? हरि नाम और शास्त्रों का अध्ययन. चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल बना दिया है. पहला आदेश था चैंट हरे कृष्णा, दूसरा था गीता भागवत पढ़ो, तीसरा क्या साधु संग, चौथा क्या भगवान के आचार विग्रह की पूजा, पांचवा धाम वासी बनो या अपने घर में वैसा वातावरण रखो जहां कृष्ण का स्मरण कर सको. और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, अगर तुम इन चीजों का कार्य करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा. तो गंभीरता से हमें भागवत के संदेश को स्वीकार करना चाहिए और इस संदेश के आधार पर जीवन बिताना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये जो नरकों का वर्णन है ये तो कल्पना है, ये तो संभव नहीं हो सकता. ये सब वास्तविकता है, इसमें कुछ कल्पना नहीं है. भगवत है भगवान का संदेश और इस संदेश में कोई कमी नहीं. तो हमें बड़ी गंभीरता से इस संदेश को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है, सवा नौ बजे कोई प्रश्न है? मुझे तो प्यार का लेक्चर मीना रोड में देना है।
हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, दैट्स वेरी नाइस।
यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश आल्सो इफ यू वांट, नो प्रॉब्लम।
महाराज, एज यू सेड दैट वन हु sees a person who comes as a guest to his house, or he approaches someone with a envious behavior, so how we deal with that? Many times it becomes obstruction.
What's that? Can you repeat it?
Many times, like it was you were telling, that when a person approaches as a guest to someone's house, and the person in the house, he sees him with very envious nature. Why he has come to me? So many times people approach, so it becomes obstruction for in our whatever duties we are following. How do we deal with that?
Well, you mean that you are a devotee practicing Krishna consciousness, a guest comes, a relative comes, and he's against Krishna consciousness. That's what you mean?
Also outside, when we are working or we are dealing with outside people.
Well, obviously when you meet outside people and they are not Krishna conscious, you should not socialize with them beyond what is necessary to follow. But if you are, obviously it doesn't mean that if somebody comes with anti-Krishna consciousness, you receive him. No, that's a different situation. Or koi prashan? Yes.
Hare Krishna. ये भौतिक जगत में केवल लालची धनी लोग नहीं, अच्छे धनी लोग भी है जो भगवान के लिए मदद करते हैं दान देकर।
तो कुछ चिंता की बात नहीं। जो दान देते हैं, जो धन का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, उनके लिए चिंता नहीं है।
नहीं, लेकिन उनका नाम ये मंदिर का दीवार में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है, वो लोग भगवत धाम पहुंचेंगे कि नहीं?
भगवत धाम पहुंचेंगे नहीं वो अलग बात है, पर जो दान देते हैं तो उनको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और मैंने जैसे लेक्चर में कहा था, जो दान देते हैं वो उस धन को कमाने में जो पाप किया जाता है उसे बच जाते हैं। भगवत धाम धाने के लिए हमें शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, केवल दान देने से भगवत धाम नहीं जा सकते। पर अगर आप तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहे हो, फिर जाने के योग्य हो सकते हो। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस यस, पूछो पूछो। यस,
हरे कृष्ण गुरु महाराज। तो जो लोग नाम उच्चारण करते हैं साथ साथ ये सब पापों करते हैं, तो उनको जमराज तो नाम उच्चारण जो करता है उसको छूते नहीं?
अगर आप हरि नाम का जाप करें और दस नाम अपराध है, अगर आप जाप कर रहे हो, मान लो मैं एक व्यक्ति को जानता था जो कहता था कि 32 माला कर रहा हूं, तो वो शराब भी पीता था। तो जो जाप करते हैं, जाप का लाभ तो मिलेगा, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरा लाभ मिलेगा जब आप जाप कर रहे हो दसम अपराधों से बचते हुए और चार नियमों का पालन करते हुए। समझो कोई कहे देखो ये हरे कृष्ण वाले इतना शोर कर रहे हैं, कृष्ण का शब्द का उच्चारण किया तो उसका लाभ तो मिलेगा, तो पूरा लाभ चाहिए तो शुद्ध भक्ति का पालन होना चाहिए। ओके
हरक्षा महाराज जी, ये भागवत में सब कुछ लिखा है नरकों के उदाहरण किए है, और ये लोग किसी को हम बताने जाएंगे तो बोले ये लिखने वाला कौन है, ये लिखने वालों ने देखा कौन देखा है नरक, ये सब लिखने वाले झूठे आप सच्ची मत मानो बोलते। हम प्रयास करते हैं समझाने का, भले हम कथा में बैठे हम अनुभव कर लेते हैं लेकिन और लोगों को समझाने बोलते ये सब गलत है झूठे, कौन देखा है नरक, भगवान तो भी किसने देखा है।
हाँ तो ये जो ऐसे व्यक्ति कहते हैं आत्मा का क्या प्रमाण है, किसने देखा है, क्या है प्रमाण, ये व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। आप क्या कर सकते हो, उनसे पूछो तुम्हारे पिता के विषय में प्रमाण कौन दे सकता है, वो कहेंगे माता जी। और पापा जी कहते थे इसी प्रकार शास्त्र प्रमाण है भगवान के विषय में। ओके यस लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा गुरु महाराज, भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको दंड दिया जाता है जमराज ने देते हैं, तो ये शरीर भौतिक शरीर वहां रुक जाते हैं, तो वहां जो दंड देते हैं कौन सा शरीर में उनको दिया जाता है?
वहां भी शरीर मिलता है जिसके द्वारा आप दंड को सजा को अनुभव कर सको, एक और शरीर मिलता है जिसके द्वारा आप सजा को अनुभव कर सको। ओके यस
हरे कृष्ण महाराज। महाराज एज यू मेंशन्ड दैट देर आर सम गुड पीपल हु गिव चैरिटी ऑल्सो, सो व्हेन वी आर प्रीचिंग we also meet people who give donations to us so that we could conduct our preaching program. Now sometimes what happens Maharaj, these people when they donate, they also we have to give them you know some extra special treatment or
recognition.
Yes Maharaj, or some political influential person, you know, if we don't give him any special treatment they may become antagonistic and they may become unfavorable. So this is one aspect, and the other thing is that we have to depend on the Lord, understand that it's Krishna who's doing the entire preaching activity. So to what extent we can give them you know special treatment so that they don't become unfavorable, and we understand that Krishna is the doer.
Well, we can give them special treatment, but we can't make them God. Don't give them so much praise that they that's going to vary from individual to individual. It's hard to give a with this formula for everyone. But just treat them with respect, honor, that's all. We're not going to change our philosophy to please those people.
Maharaj, I would like to give one example. There was one person who I was preaching to, so I gave him a Krishna book. So his hands were contaminated. So I said that please wash your hands before holding this book. He became so upset that he practically tried to stop, you know, the program that we were conducting.
This man was a demon.
But he was like helping us in previous programs. He had helped. So how we could balance?
This man's ego was very strong. Once one very important politician came to our temple just one or two months after the opening. He was in a very important position in the country. So as he was coming in with his shoes, we said, sir, jute andar nahi ja sakte. And he was a Hindu. So he did not like it ki humne unko kaha jute nikalo. So he sat down in his car and went away. So, Deputy Prime Minister. So, anyway, these things will happen. What can you do? Okay?
Hare Krishna Maharaj. जो अच्छे या बुरे कर्म यहाँ पर जीव करता है, क्या उसके लिए उसका शरीर सिर्फ जिम्मेदार है उसका कि आत्मा भी? अगर आत्मा जिम्मेदार नहीं है तो नरक या स्वर्ग में उसको फिर दंड या ऐश्वर्य कैसे मिलता है? क्योंकि अगर नरक में 28 प्रकार के नरकों में अलग अलग दंड दिए जाते हैं तो आत्मा को नुकसान ही नहीं पहुंचाया जा सकता, तो दंड किसको देते हैं?
उसे शरीर मिलता है जिसके द्वारा वह सजा भोग सके। जैसे आपने एक में सुना कि केस होगा, जो लोग जीवित व्यक्तियों को कली के चरणों में अर्पण करते हैं, तो मृत्यु के बाद जिनको अर्पण किया है वो लोग चाकू लेकर काटते हैं इन लोगों को। तो आपको शरीर मिलता है सजा भुगतने के लिए। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो जो आपको हॉस्पिटल की वर्दी पहननी पड़ती है, तो नरकों में भी आपको शरीर मिलता है सजा भुगतने के लिए। ओके, हरे कृष्णा।